धवला पुस्तक 9 लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वर्चायाणम्, नमो लोए सौवसाऊनम्। सिद्धादद्धट्ठमला विशुद्ध बुद्धि लद्ध सौवत्था, तिहुवन शिरसे हरया पसियंतु भड़ारया सवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है, वेदना खंड इसका नाम है, और उसमें कृति अनियोग द्वार चल रहा है। ये 9वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 29 पर हम आ गए, 29। यहाँ अवधि ज्ञान की प्ररूपणा हो रही है, क्योंकि सूत्र पढ़ा था हमने नमो अवधि जिनाणम, तो अवधि ज्ञान के बारे में यहाँ बात हो रही है। अवधि ज्ञान के 3 भेद बताए थे, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। यहाँ देशावधि ज्ञान की बात चल रही है, तो देशावधि ज्ञान का जो जघन्य जो देशावधि ज्ञान है, वो द्रव्य, कितने द्रव्य को जानता है, कितने क्षेत्र तक को जानता है, कितने काल तक और कितने भावों को जानता है, इसकी हमने चर्चा हुई थी। अब उसके जो अलग अलग विकल्प है, क्योंकि अवधि ज्ञानावरण भी असंख्यात लोक प्रमाण उसकी अलग अलग प्रकृतियां हैं, तो उतने ही ज्ञान के भेद है। तो उसमें पहले भेद से दूसरे भेद में क्या होता है, तो द्रव्य की अपेक्षा बहुत सारे भेद होते हैं, तब जाके क्षेत्र की अपेक्षा दूसरा विकल्प आ जाता है। क्षेत्र की अपेक्षा बहुत सारे विकल्प होते हैं, तब जाके काल की अपेक्षा दूसरा भेद आता है। वो कितने आते हैं, तो हमने देखा था पेज नंबर 29 पर कि अंगुल के असंख्यात पे भाग मात्र, क्योंकि द्रव्य के विकल्प के साथ भाव का भी विकल्प हो जाता है। यानी द्रव्य में क्या होता है कि जो पहले जघन्य का जो द्रव्य देखा था हमने, उसको ध्रुव भागहर से भाग देकर जो आएगा, एक भाग का प्रमाण आएगा, वो तो दूसरे अवधि यानी दूसरे विकल्प है, वो दूसरा विकल्प है। उसी के साथ भाव में असंख्यात गुणा करना है, भावों में तो गुणा करते जाना और द्रव्य में तो भाग देते जाना, उसको भाग प्रमाण हो जाता, एक भाग एक भाग एक भाग इस तरह से। तो ऐसे द्रव्य का एक विकल्प, यानी द्रव्य और भाव के कितने विकल्प हो जाते, तब जाके क्षेत्र का विकल्प बढ़ता है। तो कहते कि अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र। देखो पेज नंबर 29 पर नीचे से तीसरी लाइन देखो, चौथी से पढ़ते, इस प्रकार अभ्रांत होकर यानी बिल्कुल निश्चिंत रूप से पांचवा छठवा सातवा आदि करके कितने विकल्प हो गए, अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों को उत्पन्न करना चाहिए। यानी अवधि ज्ञान नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र विकल्प हो जाने के बाद, तत्पश्चात जघन्य क्षेत्र के ऊपर एक आकाश प्रदेश बढ़ाना चाहिए। जघन्य क्षेत्र हमने देखा था सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जो जघन्य अवगाहना है, वो जघन्य क्षेत्र था, उसमें केवल एक प्रदेश बढ़ेगा। इस प्रकार बढ़ाने पर क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है, परंतु काल जघन्य ही रहता है। काल वो आवली का असंख्यात भाग उतना ही रहता है, उसमें एक समय की भी वृद्धि अभी तक नहीं हुई है। पश्चात वहां के द्रव्य विकल्प को अवस्थित भागहार के ऊपर समखंड करके देने पर, इसका अर्थ उसको ध्रुवहार से भाग दो और एक भाग का प्रमाण निकालो, उसमें एक खंड उपरिम द्रव्य विकल्प होता है। यानी क्षेत्र का एक प्रदेश बढ़ने पर फिर द्रव्य के विकल्प शुरू हुए, वो कितने हो गए, वो भी सूक्ष्मंगुल के असंख्यात पे भाग प्रमाण हो जाएंगे, तब जाके क्षेत्र में दो प्रदेश बढ़ेंगे। वहाँ के भाव विकल्प को तत्प्रायोग्य असंख्यात रूपों से गुणा करने पर अवधि का उपरिम भाव विकल्प होता है, यानी हमेशा द्रव्य और भाव के विकल्प साथ साथ चलते हैं। द्रव्य में भागा क्योंकि वो सूक्ष्म तक को जानता है और ये अधिक अधिक पर्याय को असंख्यात गुणा पर्याय को जानेगा, भाव में असंख्यात गुणा और द्रव्य में उसका वो भागार, ध्रुव भागार, वो भागार का प्रमाण तो अनंत है। तो वहां के भाव विकल्प को तत्प्रायोग्य असंख्यात रूपों से गुणा करने पर अवधि का उपरिम भाव विकल्प होता है। ये 30 पेज पर तीसरी लाइन पढ़ रहे अभी हम। इस प्रकार पुनः पुनः करके अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्प उत्पन्न कराना चाहिए। इस प्रकार उक्त विकल्पों को उत्पन्न कराने पर द्वितीय क्षेत्र विकल्प के ऊपर एक आकाश प्रदेश को बढ़ाना चाहिए, यानी पहले विकल्प से दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा विकल्प में एक ही आकाश का प्रदेश बढ़ा था, तीसरे में और एक बढ़ेगा, तब क्षेत्र का एक आकाश पड़ा बढ़ना चाहिए, तब क्षेत्र का तृतीय विकल्प होता है। काल जघन्य ही रहता है, यानी हर बार सूक्ष्मगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण द्रव्य के विकल्प होने पर द्रव्य और भाव के साथ में क्षेत्र में एक ही प्रदेश की वृद्धि होती है। ऐसे होते 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 काल तो वही रहा है जघन्य ही। इस प्रकार धीरे धीरे भ्रांति से रहित निराकुल समचित्त होकर श्रोताओं को संबोधित करने वाला व्याख्यानाचार्य अंगुल के असंख्यात वे मात्र भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों को उत्पन्न करा के क्षेत्र के चतुर्थ पंचम छठे एवं सातवें आदि अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र तक अवधि के क्षेत्र विकल्पों को उत्पन्न करा के पश्चात, देखो यानी वो अंगुल का असंख्यात भाग रेस्ट अंगुल का असंख्यात भाग इतने हो जाए ना गुणा, यानी उसका वर्ग हो जाएगा, रेस्ट नहीं होगा। हाँ हाँ, काल एक समय में बढ़ेगा तो कितने विकल्प हो गए आप इमेजिन कर सकते हैं। अभी तो इतने से क्षेत्र से शुरू किया था और कितने असंख्यात 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 भेद हो जाने के बाद वो सर्वावधि एक परमाणु तक पहुँचेगा और ये भाव में भी असंख्यात लोग इतना पहुँचेगा, यानी उसके विकल्प भी कितने हो गए अवधि ज्ञान के, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। तो कहते ऐसे क्षेत्र के विकल्प भी अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र हो जाने के पश्चात जघन्य काल के ऊपर एक समय बढ़ावे। वो आवली का असंख्यात भाग उसमें एक समय बढ़ाया, वो तो वैसा ही है ना, समय से क्या फर्क पड़ना वाला है, यानी हमारे वो जानने वाले के ज्ञान में कोई इतना फर्क नहीं दिखेगा उसको, ये तो केवल ज्ञानी के द्वारा जानने की बात है और आगम से हम इसको जान सकते हैं। फिर से भी अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों के बीत जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश बढ़ाना चाहिए। इस क्रम से अंगुल के, ये अंगुल को हुआ है, अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ाकर काल का तृतीय विकल्प उत्पन्न करना चाहिए। पेज नंबर 30, यानी हर बार क्या करना है, जो दूसरा नया नया या ऊपर ऊपर का अवधि ज्ञान है, यानी द्रव्य के ही, द्रव्य और भाव के ही विकल्प होते चले जाएंगे। कितने अंगुल का असंख्यात भाव, वो बहुत बड़ा असंख्यात का प्रमाण है, इतने होने पर क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि, फिर द्रव्य के इतने भेद होने पर क्षेत्र में और दूसरा प्रदेश बढ़ा, तीसरा प्रदेश बढ़ा, ऐसा कितना बढ़ना चाहिए। अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र के विकल्प हो जाने पर काल में एक समय बढ़ेगा, फिर अभी द्रव्य को एक एक बढ़ाओ, फिर क्षेत्र में एक एक प्रदेश बढ़ाओ, इस तरह से क्षेत्र के जब जब इतने प्रदेश बढ़े ये प्रदेश, तब जाके काल में और एक समय बढ़ाना। नीचे शंका पूछते हैं 30 पृष्ठ पर। यहाँ शंकाकार कहता है, अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ता है, यह घटित नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार बढ़ाने पर देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो सकता। देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र है पूरा लोक, क्योंकि एक 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 प्रदेश बढ़ते 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 पूरा लोक होना चाहिए, और तब जाके काल कितना होता है मालूम है, एक समय कम पल्य। वो अपने उत्कृष्ट काल से असंख्यात गुणा काल उत्पन्न होगा, क्योंकि ऐसे करने पर वो काल तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। वही इस प्रकार से ऐसा क्यों कहते हैं शंकाकार, वो स्वयं अभी बताना चाहते एक्सप्लेन करके। देखो वही इस प्रकार है, देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक है और उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्य है। ऐसी स्थिति में एक समय के यदि अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र क्षेत्र विकल्प होते हैं, तो आवली के असंख्यातवे भाग से कम पल्य में कितने क्षेत्र विकल्प प्राप्त होंगे। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जब काल में एक समय की वृद्धि होती है तो क्षेत्र में अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्रदेश बढ़ते हैं। ये तो अभी हमने देखा ना, यहाँ बताए ना, यदि अंगुल के, फिर पढ़ती हूँ दूसरी लाइन, यदि ऐसी स्थिति एक समय में के यदि अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र क्षेत्र विकल्प प्राप्त होते हैं, काल में एक समय की वृद्धि होने के लिए क्षेत्र कितना बढ़ेगा, तो अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र प्रदेशों की वृद्धि होगी। तो हमारे काल कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, जघन्य अवधि ज्ञान आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण को जानता है, और देशावधि का जो उत्कृष्ट है वो एक समय कम पल्ले तक जानता है। अब उसके एक समय कम पल्ले में से आवली का असंख्यातवा भाग माइनस करो, तो जितने उसके विकल्प आ जाएंगे, कितने समय हो गए, तो इन समयों को अंगुल के असंख्यातवे भाग से गुणा करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा क्षेत्र। वो फिर पढ़ते हैं, फिर आपको बताएंगे दोबारा। इस प्रकार इच्छा राशि से गुणित फल राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर यानी त्रैराशिक करने पर असंख्यात घनांगुल ही उत्पन्न होते हैं, न कि उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र लोक, यानी लोक तक वो नहीं प्रदेश पहुंचेंगे। उसका प्रमाण कितना हो जाएगा, असंख्यात घनांगुल। अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर यदि काल का एक समय बढ़ता है, तो अंगुल के असंख्यातवे भाग से हीन लोक में कितनी समय वृद्धि होगी। अभी उल्टा कर रहे कि क्षेत्र में तो इतना बढ़ा है, तो हमने क्या देखा था, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण जब क्षेत्र की वृद्धि होती है तो समय में एक बढ़ता है, और यहाँ वृद्धि कितनी हुई प्रदेशों से, प्रदेशों की अंगुल के असंख्यातवे भाग से लेकर लोक तक, यानी लोक माइनस अंगुल का असंख्यातवा भाग करो, तो इतने प्रदेशों की गिनती के लिए अंगुल के असंख्यात विभाग में एक समय, तो इतने पूरे में कितने समय, ऐसा त्रैराशिक करेंगे। इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि को यदि प्रमाण राशि से अपवर्तित किया जाए तो लोक का असंख्यातवा भाग आता है, न कि देशावधि का उत्कृष्ट काल समय कम पल्य। यानी पल्ले से लोक ये बहुत बड़ी संख्या है ना, यानी वो बहुत काल का प्रमाण बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये कहना चाहते हैं। इसलिए ये सब शंका चल रही है, आवली के असंख्यातवे भाग से हीन समय कम पल्य का, यानी काल के विकल्प कितने हो गए, उत्कृष्ट काल में से जघन्य काल माइनस करो और एक समय ऐड करो, तो कहते आवली के असंख्यातवे भाग से हीन समय कम पल्य का जघन्य अवधि क्षेत्र से रहित लोक में भाग देने पर ये क्षेत्र के विकल्प हो जाएंगे। उत्कृष्ट क्षेत्र लोक है और जघन्य क्षेत्र जो वो सूक्ष्म निगोद की बात था, तो उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस किया, लोक का असंख्यातवा भाग आता है। इतने क्षेत्र विकल्पों के बीतने पर काल में एक समय वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा पूर्वोक्त दोषों का प्रसंग आवेगा। यानी ये क्या कहना चाहते हैं आप, ये जो प्रमाण बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो प्रमाण क्या होना चाहिए था, तो जितने क्षेत्र के विकल्प है, क्षेत्र के विकल्प कितने हैं? लोक माइनस वो जघन्य अवधि का क्षेत्र, एक क्षेत्र के विकल्प, विकल्प है ना, उसके क्षेत्र की अपेक्षा कितने भेद हैं अवधि ज्ञान के, डिवाइडेड बाय काल की अपेक्षा जितने विकल्प हो गए। तो कहते हैं ये जो प्रमाण आएगा यहाँ x, तो इतने प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में एक समय बढ़ता है, ऐसा कहो, ये कहना चाहते हैं। वहां क्या बताया, केवल अंगुल के असंख्या तो ये भाग बढ़ने पर एक समय बढ़ता है। यदि ऐसा करते जाओ, अंगुल के असंख्या तो भाग में एक समय, फिर अंगुल के असंख्या तो भाग में एक समय, ऐसा करते, यहाँ तो पल्ले प्रमाण बताया है, तो पल्ले प्रमाण के लिए कैलकुलेट करेंगे तो असंख्यात घनांगुल ही उत्तर आता है क्षेत्र के विकल्प। यहाँ तो लोक तक पहुंचे हैं, यानी क्षेत्र के विकल्प बहुत ज्यादा बढ़े हैं और काल के विकल्प उस प्रमाण में इतने बढ़े नहीं है, इसलिए उनका कहना था आप जो कह रहे हैं ना इतने जाने पर इतना होता है वो प्रमाण ठीक नहीं है, ये नया प्रमाण बताओ कि क्षेत्र के विकल्प डिवाइडेड बाय काल के विकल्प जो संख्या आएगी उतना होना चाहिए, ये उनका कहना है। समाधान, यह घटित नहीं होता क्योंकि एकांततः ऐसा स्वीकार करने पर, हाँ ये तो बताया है कहीं कहीं कि क्षेत्र के इतने एक एक बढ़ते हुए अंगुल के असंख्यात भाग बढ़ने पर काल में एक समय की वृद्धि होती है, तो बताया था, परंतु कहते एकांत ऐसा नियम नहीं है। तो ऐसा स्वीकार करने पर वर्गणा के गाथा सूत्रों में कहे हुए क्षेत्रों की अनुत्पत्ति का प्रसंग आएगा। वर्गणा यानी हमारा जो वर्गणा संबंधी जो सूत्र है उसमें जो क्षेत्र बताया अवधि ज्ञान के वो हो नहीं सकते हैं, वही इस प्रकार से काल की अपेक्षा आवली के संख्यात्वे भाग को जानने वाला क्षेत्र से अंगुल के संख्यात्वे भाग को जानता है, यानी प्रथम कांडक का उत्कृष्ट क्षेत्र है। देखो निकालो पेज नंबर 24, ये पांच नंबर का नीचे का है ना श्लोक की जो अर्थ है, नीचे का पैराग्राफ, फिर से पढ़ती पूरा का पैराग्राफ, देशावधि के 19 कांडकों में से। देखो कांडक का अर्थ क्या देखा था हमने, देशावधि के जो अलग अलग भेदों को हमने ग्रुप्स बनाए, 19 ग्रुप बनाए, उनमें प्रथम ग्रुप जो है उसका जघन्य क्षेत्र घनांगुल का असंख्यात्व भाग, जो हमने अभी सूक्ष्म निगोद की अवगाहना देखी थी वो, और जघन्य काल आवली के असंख्यात विभाग जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसी कांडक में जो पहला ग्रुप है उसका उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल का संख्यात्व भाग, यानी घनांगुल के असंख्यात विभाग से घनांगुल के संख्यात विभाग, यानी बहुत बड़ा हो गया वो, और उत्कृष्ट काल आवली के संख्यात विभाग हुआ, पहले असंख्यात्व भाग था अभी संख्यात्व भाग हुआ, यानी यहाँ वो क्षेत्र का बढ़ने का और काल का बढ़ने का वही प्रोपोर्शन नहीं रहा, हाँ इक्वल नहीं है, कहीं कहीं एकदम जंप करके ज्यादा भी वृद्धि होती है, इतना समझना है। द्वितीय कांडक में क्या देखा, क्षेत्र घनांगुल हो जाता है, वो संख्यात विभाग से एकदम घनांगुल हो गया, और काल कुछ कम आवली प्रमाण, वो आवली के संख्यात विभाग से आवली प्रमाण हो गया। तृतीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल पृथक्त्व अनेक घनांगुल हुए और काल पूर्ण आवली प्रमाण हुआ, वहाँ कुछ कम आवली था या पूर्ण आवली, यानी क्षेत्र अधिक भी बढ़ रहा है। एकांत से ऐसे नहीं कि अंगुल का असंख्यात्व भाग ही बढ़ेगा, कहीं कहीं ज्यादा भी बढ़ रहा है, यही कहना चाहते हैं यहाँ, ये समाधान में यही बताया। अभी हम 31 पेज पर इस प्रकार, अभी आना 32 पेज पर, इस प्रकार सूत्र में कहा गया है। अब वही अभी हम जो द्वितीय कांड की बात पढ़ के आए ना उसी की बात यहाँ देख रहे, काल से कुछ कम आवली को जानने वाला इकतीस पेज पर लास्ट में हमने पढ़ा इस प्रकार, 31 पेज पहले कांडक की बात बता दी उन्होंने उत्कृष्ट। इस प्रकार अभी आना 32 पेज पर, सूत्र में कहा गया है 32 पेज पर अभी मैं पढ़ रही हूँ और वहीं पर आगे, काल से कुछ कम आवली को जानने वाला क्षेत्र से घनांगुल को जानता है। देखो क्या कहा, पेज नंबर 24 पर हमने देखा था द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल होता है और काल कुछ कम आवली हो जाता है ना? समझ में आ रही बात? ये द्वितीय कांडक का क्षेत्र है, वही उत्कृष्ट उत्कृष्ट समझ लेना अभी। अब 32 पेज पर दूसरी लाइन, काल की अपेक्षा आवली को जानने वाला, ये तीसरा कांडक है, क्षेत्र से अंगुल पृथक को जानता है, यानी कुछ संख्यात अंगुल हो जाते हैं। अब काल की अपेक्षा अर्धमास को जानने वाला क्षेत्र की अपेक्षा भरत क्षेत्र को जानता है, एकदम जम करके उन्होंने आठवां कांडक बताया है। देखो पेज नंबर 25 पर देखो, ये सब पहले बता चुके थे ना, इसलिए वो डायरेक्ट बता रहे। देखो पेज नंबर 25 पर सातवें गाथा के उसमें अष्टम कांडक में क्षेत्र भरत क्षेत्र और काल अर्धमास है, ये यहाँ बताया, ये आठवें कांडक की बात है। वो तीसरा कांडक हुआ, हाँ। अब जो काल की अपेक्षा अर्धमास को जानने वाला, वो आठवां कांडक है, आठवां ग्रुप है, पेज नंबर 32। अब काल की अपेक्षा साधिक एक मास को जानने वाला क्षेत्र से जम्बूद्वीप को जानता है, वो अर्धमास से अभी साधिक एक मास हुआ और जम्बूद्वीप हुआ, और वो है नौवां कांडक। ये सब 25 पेज पर आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद बता रहे, काल की अपेक्षा एक वर्ष को जानने वाला क्षेत्र से मनुष्य लोक को जानता है, यह है दसवां कांडक। इस प्रकार इत्यादि क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो गए, ये समाधान में आचार्य बता रहे हैं। यदि उतना ही अंगुल का असंख्यात भाग, असंख्यात भाग इतना ही अगर क्षेत्र में वृद्धि होती रहेगी तो ये बातें घटित नहीं होती है, कहीं कहीं क्षेत्र ज्यादा भी बढ़ा है, ये इतना ही उनको कहना है। क्योंकि लोक के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल में एक समय की वृद्धि स्वीकार की है, यानी केवल अंगुल का असंख्यात भाग ही नहीं, लोक का असंख्यात भाग में भी काल की एक समय की वृद्धि स्वीकार की गई है। और सूत्र विरुद्ध युक्ति होती नहीं है, क्योंकि हाँ स्वीकार की गई, यानी कहीं कहीं अधिक भी क्षेत्र बढ़ता है, केवल अंगुल, हाँ केवल अंगुल का असंख्या तो ये भाग क्षेत्र के विकल्प होते हैं, तब काल के एक समय की वृद्धि होती है, पहले उन्होंने जनरल इन सामान्य विधान कर दिया, परंतु कहीं कहीं अधिक भी विकल्प होते हैं क्षेत्र के, तब जाके काल में एक समय की वृद्धि होगी, ये कहना चाहते हैं। यानी ये सूत्र विरुद्ध, सूत्र जैसा है वैसे हमको युक्ति करना है, उससे विरुद्ध नहीं, तर्क उससे विरुद्ध नहीं लड़ा, सूत्र में तो बातें बताई है, तो हमें तर्क भी ऐसे प्रस्तुत करने की जो वही सूत्र की बात सिद्ध हो जाए, सूत्र से विरुद्ध सिद्ध नहीं करना है हमको। अभी फिर शंका, यदि यह नहीं घटित होता है तो न हो, परंतु फिर उत्कृष्ट क्षेत्र और काल की उत्पत्ति कैसे संभव है? उसका समाधान, वृद्धि के नियम का अभाव होने से उनकी उत्पत्ति घटित होती है, यानी वो जो नियम हमने बताया था पहले, अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र के विकल्प होने पर ही एक समय की, तो कहते उसका बिल्कुल ऐसा ही नियम नहीं है। प्रथमतः अंगुल के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ता है, वह इस प्रकार है। आवली के संख्यात्व भाग में से जघन्य काल को कम कर देने पर, आवली का संख्यात्व भाग क्योंकि हमने पहला कांडक का वो एक मिनट 24 पर था ना, पहले का उत्कृष्ट था आवली का संख्यात्व भाग, पहले कांडक का उत्कृष्ट आवली का संख्यात्व भाग था और पहले कांडक का जघन्य आवली का संख्यात्व भाग था। पहले कांडक का जो है प्रथम कांडक का उत्कृष्ट काल है क्योंकि आवली के संख्यात्व भाग क्यों लिया उन्होंने, तो पहले कांडक का वो उत्कृष्ट काल था। तो आवली के संख्यात्व भाग में से जघन्य काल को कम कर देने पर ने आवली का असंख्यात्व भाग कम कर दिया, शेष आवली के संख्यात्व भाग मात्र काल वृद्धि होती है। यानी आवली के देखो आवली के संख्यात्व भाग यानी बड़ा है, उसमें असंख्यात्व भाग बहुत छोटा है तो संख्यात्व भाग ही शेष रह जाएगा। तो इतने काल की वृद्धि हुई यानी पूरे कांडक में काल इतना बड़ा, कितना आवली का संख्यात्व भाग इतना बड़ा। अब क्षेत्र कितने हुआ, अब उन्होंने विरलन की पद्धति से बता रहे, इसे विरलित कर जघन्य अवधि क्षेत्र से कम अंगुल के संख्यात्व भाग मात्र अवधि की क्षेत्र वृद्धि को। अभी अंगुल का संख्यात्व भाग जो लिया है, घनांगुल का संख्यात्व भाग बताया था ना, वो क्या है, वो तो उत्कृष्ट क्षेत्र है, प्रथम कांडक का उत्कृष्ट क्षेत्र, उसमें से प्रथम कांडक का जघन्य क्षेत्र माइनस करो तो हमें क्या मिलेगा, क्षेत्र की वृद्धि कितनी हुई इसका प्रमाण हो जाएगा। जैसे 5 से 100 कितना बढ़ा, तो 100 में से 5 माइनस करो इतना बढ़ा, 5 और 100 में डिफरेंस कितना है, वृद्धि कितनी हुई, 5 से 100 में कितनी हुई, तो 95 वृद्धि हुई उसकी, 95 बढ़े ना, 5 में 95 बढ़े। ऐसे जघन्य क्षेत्र को उत्कृष्ट में से माइनस करो तो ये क्षेत्र की वृद्धि, जघन्य काल को उत्कृष्ट में से माइनस करो तो ये काल की वृद्धि। प्रथम कांडक में ही बता रहे, प्रथम कांडक का हमको जघन्य प्रमाण बताया और प्रथम कांडक का उत्कृष्ट बताया, तो उत्कृष्ट क्षेत्र में से जघन्य क्षेत्र माइनस करो तो क्षेत्र की वृद्धि और उत्कृष्ट काल में से जघन्य काल माइनस करो तो काल की वृद्धि, ये तो माप आएगा ना हमारे पास। तो काल की वृद्धि हमने आवली का संख्यात्व भाग देखा था और क्षेत्र की वृद्धि में भी क्या लेना है, अंगुल के संख्यात्व भाग में से अंगुल का असंख्यात्व भाग माइनस कर दिया तो प्रमाण अंगुल का संख्यात्व भाग ही आया। यानी अभी क्या करना है हमको, क्षेत्र के विकल्प जितने हो यानी क्षेत्र में जितनी वृद्धि हुई डिवाइडेड बाय काल की वृद्धि, तो हमें ये बात पता चलेगा कितने क्षेत्र बढ़ने पर कितना काल एक एक समय बढ़ता है। यानी अंगुल के संख्यात्व भाग को आवली के संख्यात्व भाग से भाग देंगे, अंगुल के संख्यात्व भाग को आवली के संख्यात्व भाग से भाग देंगे, यानी संख्यात संख्यात चला जाएगा तो अंगुल डिवाइडेड बाय आवली ऐसा प्रमाण आएगा उसका, ख्याल में है ना। अब फिर पढ़ते हैं, वो नीचे से 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन वह इस प्रकार है, आवली के संख्यात्व भाग में से जघन्य काल को कम कर देने पर शेष कितना रहता है, आवली के संख्यात्व भाग मात्र काल वृद्धि होती है। पहले कांडक के उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस किया, ये काल की वृद्धि मिली, इसे विरलित कर उसमें एक एक में बिखेर दो, जघन्य अवधि क्षेत्र से कम अंगुल के संख्यात्व भाग मात्र अवधि की क्षेत्र वृद्धि को। क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो अंगुल के संख्यात्व भाग में से असंख्यात्व भाग कम किया तो छोटा वाला संख्यात्व भाग जो कि यथायोग्य आया उत्तर, तो उसको हम वो काल की वृद्धि के जो विरलन किया उसमें क्षेत्र की वृद्धि को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारी भाषा में क्षेत्र की वृद्धि डिवाइडेड बाय काल की वृद्धि, वो विरलन समझने में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है ना, उत्तर तो वही आएगा, क्षेत्र की वृद्धि डिवाइडेड बाय काल की वृद्धि। तो कहते उसको समखंड कर देने पर प्रत्येक समय में यानी एक एक के ऊपर क्या आ जाएगा, अंगुल का असंख्यातवा भाग प्राप्त होता है। यानी ये तो एवरेज मिला हमको। यहाँ यदि अवस्थित क्षेत्र वृद्धि है तो एक एक अंक के प्रति प्राप्त क्षेत्रों के बढ़ने पर काल में भी उसी उसी क्षेत्र का अधस्तन समय एक एक बढ़ाना चाहिए। अथवा अवस्थित वृद्धि ने हर बार उतना ही क्षेत्र बढ़ना चाहिए तो क्या करेंगे, अभी हमने जो देखा था ना अंगुल का संख्यात विभाग को आवली के संख्यात विभाग से भाग दिया था। अथवा दूसरी बात क्या होते है, यदि अनवस्थित वृद्धि है तो भी प्रथम विकल्प से लेकर अंगुल के असंख्यात विभाग वृद्धि के असंख्यात विकल्प ले जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम अंगुल के असंख्यात विभाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीच जाने पर काल में एक समय बढ़ता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। क्या कहना चाहते, पहली बार जब क्षेत्र के विकल्प हुए वो अंगुल के असंख्यात विभाग हुए तब जाके काल में एक समय बढ़ा, फिर आगे ज्यादा भी क्षेत्र के विकल्प हुए हैं तब एक एक समय बढ़ा होगा। इसको कहते हैं अनवस्थित वृद्धि, उतनी की उतनी नहीं, कभी कभी ज्यादा ही क्षेत्र विकल्प हुए तब जाके समय बढ़ा है, क्योंकि क्षेत्र ज्यादा बढ़े हैं और काल में वृद्धि कम हुई है। फिर सेकंड लाइन, अथवा यदि अनवस्थित वृद्धि, अनवस्थित है ना, फिक्स उतनी की उतनी वृद्धि नहीं, ज्यादा भी हो सकती है, तो भी प्रथम यानी प्रथम विकल्प का यही प्रमाण है। क्या प्रथम विकल्प का अर्थ क्या है, पहली बार जब समय एक बढ़ा तो क्षेत्र के विकल्प कितने गए, अंगुल के असंख्या पे, ये यहाँ कहना चाहते हैं। तो प्रथम विकल्प से लेकर यानी प्रथम विकल्प अवधि ज्ञान का जघन्य भेद, वो प्रथम विकल्प वहां से लेकर अंगुल के असंख्यात विभाग वृद्धि के असंख्यात विकल्प ले जाना चाहिए, किसके क्षेत्र संबंधी, यानी क्षेत्र के प्रथम विकल्प से लेकर अवधि ज्ञान के क्षेत्र की अपेक्षा जो प्रथम विकल्प था वहां से लेकर पेज नंबर 33। यहाँ यही बात सिद्ध की उन्होंने कि वो अवस्थित ही वृद्धि होनी है ऐसा नहीं है, कहीं कहीं अनवस्थित वृद्धि भी होगी, अधिक वृद्धि भी होगी, परंतु जो पहली बार जब काल एक समय बढ़ा तो अंगुल का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र बढ़ा था, इतनी बात नक्की हो जाती है। सेकंड लाइन फिर पढ़ती हूँ, अथवा यदि अनवस्थित वृद्धि है यानी अधिक भी वृद्धि कभी कभी होती है, फिक्स उतनी नहीं लेना है, तो भी प्रथम विकल्प से लेकर यानी क्षेत्र का जो प्रथम विकल्प है अवधि ज्ञान का क्षेत्र संबंधी प्रथम विकल्प है, उससे लेकर अंगुल के असंख्यात विभाग वृद्धि के असंख्यात विकल्प ले जाना चाहिए, यानी एक एक प्रदेश बढ़ते हुए इतने असंख्यात उसके विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम अंगुल के असंख्यात विभाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीच जाने पर काल में एक समय बढ़ता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। यानी स्टार्टिंग में वो अंगुल का असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र जाएंगे तो काल एक समय बढ़ा, फिर उतना बढ़े तब काल एक समय, इस तरह से शुरू में तो ले जाना चाहिए। पुनः उपरिम अंगुल के असंख्यात विभाग अथवा उसके ही संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र विकल्पों के बीतने पर काल में एक समय बढ़ता है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्रकारों से वृद्धि होने का कोई विरोध नहीं है। शुरुआत में तो अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण विकल्प जाने पर काल में एक एक समय की वृद्धि होगी, और आगे अंगुल का संख्यात भाग जाने पर काल में वृद्धि, हाँ वृद्धि ज्यादा होगी, क्षेत्र के विकल्प अधिक हो गए, यानी अवधि ज्ञान के क्षेत्र की विकल्प अपेक्षा अनेक विकल्प होने पर काल में एक समय की बढ़ोतरी होगी। क्योंकि दोनों ही प्रकारों से वृद्धि होने का कोई विरोध नहीं है, यानी कहीं अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र विकल्प लेना तब काल में एक समय बढ़ता है, कहीं कहीं अंगुल का संख्यात भाग विकल्प होते तब जाके काल में एक समय बढ़ता है, ऐसा लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब द्वितीय कांडक की बात करेंगे। पहले कांडक में बता दिया हर कांडक में जघन्य और उत्कृष्ट में जो क्षेत्र में डिफरेंस पड़ा है और काल में डिफरेंस पड़ा है, वृद्धि हुई, उसकी बात करेंगे। अब जघन्य काल को कुछ कम आवली में से कम करके देखो, द्वितीय कांडक का जो उत्कृष्ट क्षेत्र था कितना था? काल देखो, द्वितीय कांडक का काल कितना है? पेज नंबर 32 पहली लाइन में है, काल से कुछ कम आवली है। तो जघन्य काल को कुछ कम आवली में से कम करके, अब द्वितीय कांडक का जघन्य काल कितना है? जो प्रथम कांडक का उत्कृष्ट काल है वो द्वितीय का जघन्य है। तो जघन्य काल को कुछ कम आवली में से कम करके, वहां कितनी हुई थी आवली का संख्यात्वा भाग हुआ था, पहले कांडक का उत्कृष्ट आवली का संख्यात्वा भाग था, वो द्वितीय कांडक का जघन्य कहलाएगा। एक समय बढ़ा दो उसमें, परंतु वो उतना ही कहलाएंगे ना आवली का संख्यात्वा भाग। और अभी कितना तक बढ़ा वो आवली में? कुछ कम। तो कुछ कम आवली में से आवली का संख्यात्वा भाग कम कर दो। ख्याल में आती है ना बात? फिर पढ़ती हूँ ये नीचे का पैराग्राफ 33 पेज पर। जघन्य काल को, हाँ, जघन्य काल कितना है अभी इसका? आवली का संख्यात्वा भाग कुछ कम आवली में से कम करके, ये द्वितीय कांडक में काल की वृद्धि हुई, शेष का विरलन कर, शेष यानी वो आवली का संख्यात बहुभाग हो जाएगा, संख्यात्वा भाग कम कर दिया ना कुछ कम आवली में से, ठीक है, हम उसको अपने शब्दों में नहीं डालेंगे। तो जो रिमेनिंग है वो क्या है? काल की वृद्धि है, उसको विरलन कर। अब क्या करना है? क्षेत्र की वृद्धि उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्षेत्र में कितना बढ़ा? तो जघन्य क्षेत्र से हीन, द्वितीय कांडक का जघन्य क्षेत्र हमने देखा था अंगुल का संख्यात्वा भाग था, और वहां द्वितीय कांडक का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना था? घनांगुल था। तो जघन्य क्षेत्र से हीन घनांगुल, यानी घनांगुल का संख्यात्वा भाग घनांगुल में से कम कर दिया था। समखंड करके प्रत्येक समय के ऊपर देकर अवस्थित व अनवस्थित वृद्धि के विकल्पों में, यानी वहां कहीं कहीं अवस्थित वृद्धि भी होगी, कहीं कहीं एक्स्ट्रा वृद्धि भी होगी। अवस्थित व अनवस्थित वृद्धि के विकल्पों में अंगुल के असंख्यात्वे भाग व संख्यात्वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीतने पर काल में एक समय बढ़ता है, ऐसी पूर्व के समान प्ररूपना करनी चाहिए। यानी कभी कभी अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र के बीतने पर काल की एक समय वृद्धि होगी, कहीं कहीं अंगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र के बाद काल में एक समय की वृद्धि, कहीं अवस्थित वृद्धि है कहीं अनवस्थित वृद्धि, ये उसका अर्थ है। जैसे पहले कांडक में बताया वैसे यहाँ पर भी समझना। इस प्रकार जाकर अनुत्तर विमानवासी देव, जो बीच बीच में कोई बताए ना, उन्होंने गाथाओं में बताया कौन कितना जानता है क्या है, तो अनुत्तर विमानवासी देव काल की अपेक्षा पल्लोपम के असंख्यात्वे भाग, देखो ये 12 नंबर की गाथा में था 26 पेज पर, वहां कुछ गाथाएं बताई थी ना कौन कितना जानता है, ये 11 अनुत्तरों की बात है ना, अनुत्तर यानी 12, 11वीं तो आनंद प्राणत की है, 12वीं गाथा है, हाँ अभी उसकी बात करेंगे। अनुत्तर विमानवासी देव काल की अपेक्षा पल्लोपम के असंख्यात्वे भाग, उन्होंने बताया ना वहां कितना काल कितने तक जानते हैं, तो पल्ले के असंख्यात्वे भाग, और क्षेत्र की अपेक्षा समस्त लोक नाली को जानते हैं। अब समस्त लोक नाली ने पूरे 14 घन राज्य हो जाएगा, 14 राज्य हाइट है, और एक राज्य और एक राज्य तरस नाली की विड्थ है, दो भुजा है उसके। तो कहते अतएव जघन्य काल से रहित पल्लोपम के असंख्यात्वे भाग का विरलन कर, जघन्य क्षेत्र से हीन लोक नाली को चाहिए, जघन्य आदि अध्वान को नहीं, ऊपर क्या लिखा है प्राकृत में, नीचे से तीसरी लाइन जगन्य काल से, एक सेकंड नीचे से चौथी लाइन देखो, जहन्न कालुण पलिदो वमस्य असंख्य यदि भागम विरलिय, इसका विरलन करना है। जघन्य काल से हीन पल्ल्य के असंख्यात विभाग का विरलन किया, और जघन्य क्षेत्र से हीन जघन्य खेतेन जहन्न आदि दद्धाणम नहीं चाहिए, जहन्न खेते नूनम चाहिए। लोकनालिम समखंडम करिय दिन्ने, यानी जघन्य क्षेत्र से हीन लोक नाली को समखंड करके देने पर ऐसा होना चाहिए। देखो प्राकृत में करो पहले, नीचे से तीसरी लाइन विरल ही पहला शब्द है, उसके बाद जहन्न खेते न लिखा है, उसके बदले जहन्न खेते नूनम, हाँ यानी जघन्य क्षेत्र से हीन न्यून, जहन्न खेते नूनम नूनम नूनम, हाँ जहन्न खेते नूनम, णु और णम, हाँ णूणम बाण 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 वाला न, उसका ना बाद वाला जो शब्द है ना जहन्नादि अध्यानम, उसके बदले लोकनालिम, हाँ लोकनालिम, समखंडम करिय दिन्ने, आगे बरोबर है। अब ऐसी बात जरा प्राकृत में देखो, ऊपर से एक दो तीन चार पांच छह सातवीं लाइन, ऊपर से सातवीं लाइन जहन्न खेते ने लिखा है ना, वहां पर भी जहन्न खेते नूनम चाहिए, सातवीं नूनम गणांगुलम समखंडम करिए, क्योंकि ऐसी बात ऊपर भी आई थी, इसलिए वो हमने उस समय भी लास्ट टाइम ही वो किया था। अब हिंदी में अब हिंदी में नीचे से तीसरी लाइन, पहला शब्द है हीन, उसके बाद जघन्य आदि अध्वान को, ये तीन शब्द निकालना, जघन्य आदि अध्वान को उसको राउंड करके पेंसिल से निकालो, उसके बदले लिखना लोकनाली को, यानी वो अभी पढ़ती हो ऐसा हो जाएगा, जघन्य क्षेत्र से हीन लोकनाली को समखंड करके देने पर, यानी हमको क्या उसका उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है तो वो लोकनाली, उसमें से जघन्य क्षेत्र माइनस करना, उस कांडक का जघन्य क्षेत्र, जो नीचे के कांडक का उत्कृष्ट होगा वही उसका जघन्य होगा। यानी जघन्य क्षेत्र को लोकनाली में से कम करेंगे और जो प्रमाण आएगा उसको वो काल की जो वृद्धि है उससे भाग देंगे हम। इनकी भाषा में वो लोक जघन्य क्षेत्र से हीन लोक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, किसमें काल की वृद्धि के जो प्रमाण आया था उसको विरलन करके उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, खंड समखंड करके देना, तो एक के प्रति जो प्रमाण आएगा उतनी एक एक समय जब काल बढ़ता है तो क्षेत्र में इतनी वृद्धि होनी चाहिए, ये वहां घटित होता है। तो क्या आता है उसका प्रमाण, हाँ तो प्रत्येक रूप के प्रति, रूप यानी हमने जो विरलन किया है उसका एक संख्या, उसमें क्या बात आएगी असंख्यात जगत प्रतर मात्र, लोक का असंख्यात भाग प्राप्त होता है, वो भी जगत प्रतर को असंख्यात गुणा करो, ये लोक का असंख्यात भाग है, यानी इतने क्षेत्र के विकल्प जाने पर काल में एक समय की वृद्धि होगी। और तब द्रव्य की अपेक्षा वो कितना ध्रुवहार का भागहार चल ही रहा है, ख्याल में है ना। हाँ, वो उतने और सूक्ष्म सूक्ष्म तक को जानता रहेगा। फिर भी अभी परमावधि के आगे और असंख्यात विकल्प है। तो कितनी अनंतता होगी पहले, क्योंकि अनंत ध्रुवहार हार का प्रमाण भी अनंत है। अनंत को इतने बार भाग दे रहे, फिर भी वो अभी जब जाके सर्वावधि में एक परमाणु तक पहुंचेगा। यहाँ एक रूप धरित मात्र, एक रूप धरित है ना, अभी समझ में है ना। तो विरलन के एक के प्रति जो क्षेत्र का प्रमाण आया, जो लोक का असंख्यात भाग बताया, एक रूप धरित मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ाता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार अधस्तन क्षेत्र और काल के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। यानी डायरेक्ट इतने क्षेत्र होने चाहिए ऐसा नहीं कहना, तो क्या कहना है वो बता रहे। इसलिए घनांगुल के असंख्यात विभाग, कहीं पर घनांगुल के संख्यात विभाग, कहीं पर घनांगुल, कहीं पर घनांगुल के वर्ग, इस प्रकार जाकर कहीं पर जगत श्रेणी, कहीं पर जगत प्रतर और कहीं पर असंख्यात जगत प्रतरों के बीतने पर एक समय बढ़ता है, ऐसा कहना चाहिए। यानी अभी अभी जो प्रमाण आया वो हर बार उतना बढ़ता है ऐसा मत कहो, कहते हैं। यहाँ पर भी कभी कभी अंगुल के असंख्यात विभाग मात्र क्षेत्र के विकल्प जाने पर एक समय बढ़ेगा, कहीं कहीं अंगुल के संख्यात विभाग बीतने पर बढ़ेगा, कहीं कहीं घनांगुल प्रमाण बीतने पर होगा, कभी कभी घनांगुल के वर्ग इतने क्षेत्र के विकल्प जाने पर काल में एक समय की वृद्धि होगी, कहीं कहीं पर जगत श्रेणी में कितना प्रमाण बढ़ा है उसमें प्रदेशों की संख्या लेनी है, इतने क्षेत्र के विकल्प जाने पर काल में एक समय की वृद्धि होगी, और कहीं कहीं जगत प्रतर प्रमाण उसमें एक समय और अधिक तक जानेगा। यानी वहाँ अधिक क्षेत्र के अधिक विकल्प चले जाएंगे। क्षेत्र में वृद्धि तो एक एक प्रदेश से ही बढ़ेगी, परंतु उसके बहुत सारे विकल्प जाने पर काल समय काल में बढ़ेगा। पहले क्या होता था, अंगुल का असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र बढ़ा, काल एक समय बढ़ा। अब यहाँ और ऊपर ऊपर के जो कांडक है उसमें क्या होता है, तो उसमें क्षेत्र पर अनेक विकल्प होते हैं, उसके बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं। अब जगत श्रेणी प्रमाण विकल्प हो गए तब जाके काल एक समय में बढ़ेगा, क्योंकि असंख्यात जगत प्रतर कहीं कहीं सिद्ध करना है ना। इसलिए उत्कृष्ट क्षेत्र और काल की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं, यह कहा सिद्ध हुआ। प्रश्न तो यही शंकाकार ने पूछा था कि क्षेत्र की जो टोटल वृद्धि है और काल की जो टोटल वृद्धि है, इसका अगर हम प्रोपोर्शन उसका प्रमाण निकालेंगे तो क्षेत्र के बहुत ज्यादा विकल्प आ जाते हैं, लोक का असंख्यात विभाग तक चले जाते हैं, और आप तो कहते केवल अंगुल का असंख्यात विभाग बढ़ने पर ही काल एक समय बढ़ता है। तो अलग अलग कांडकों में उन्होंने सिद्ध किया। शुरुआत के कांडकों में तो अंगुल का असंख्यात विभाग बढ़ने पर एक समय बढ़ता है, बाद में कहीं अंगुल का संख्यात विभाग, कहीं अंगुल प्रमाण, इस तरह से आगे आगे के उन्होंने विकल्प बता दिए। इस प्रकार ये अस लिखा है वो निकालो शब्द अस, इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिए जब तक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की द्विचरम समान वृद्धि नहीं प्राप्त होती। समान वृद्धि कब कहेंगे, हमने देखा ना द्रव्य के इतने विकल्प जाने पर क्षेत्र के एक प्रदेश बढ़ता है, क्षेत्र के इतने विकल्प जाने पर काल में एक समय बढ़ता है। तो जब काल में एक समय की वृद्धि होती है तब चारों ही नए विकल्प हो जाते हैं। जब जब काल में वृद्धि होगी तब क्षेत्र में भी होगी ही, और द्रव्य में तो चल ही रही उसकी भी होगी, उस समय भाव की तो होती ही रहती द्रव्य के साथ। तो यहाँ क्या कहते हैं, शंका, द्विचरम समान वृद्धि किसे कहते हैं, उसका समाधान, जिस स्थान में चारों की युगपद वृद्धि होती है उसकी समान वृद्धि ऐसी संज्ञा है। चारों की युगपत हमने बताया ना, चारों की युगपत कब होगी, जब जब काल में वृद्धि होगी तभी चारों की होगी। उसमें चरम समान वृद्धि को छोड़कर उससे नीचे की वृद्धि द्विचरम समान वृद्धि है, यानी अंतिम जब वो लास्ट टाइम जब सभी बढ़कर अपने अपने उत्कृष्ट तक पहुंचेंगे ना, उसके पहले वाली वृद्धि लेना, उसके पहले वाली समान वृद्धि। उतना अध्वान जाकर वहां जो कुछ भी भेद है उसे कहते हैं। हाँ, वहाँ द्विचरम समान वृद्धि से ऊपर कितने काल विकल्प है, एक समय रूप एक विकल्प है, क्या कहना चाहते हैं? हर बार जो काल में तो एक एक ही समय की वृद्धि होगी, क्षेत्र में हीनाधिक हो रही है और द्रव्य में तो हर बार तो होती रहती, वो तो बात अलग है। तो ये द्विचरम लिया, इसके बाद एक बार वृद्धि होने वाली है, तो कितनी वृद्धि शेष है, एक समय रूप एक विकल्प शेष है, समझ में है ना? अभी एक और बार एक वृद्धि और हो जाएगी, एक समय की वृद्धि और हो जाएगी, इतना ही कहना चाहते हैं। ये द्विचरम वाली बात है, इसके बाद हाँ, काल का एक ही विकल्प बाकी है, एक समय वाला, किंतु क्षेत्र विकल्प असंख्यात श्रेणी मात्र, हाँ, अथवा संख्या श्रेणी मात्र, अथवा जगत श्रेणी मात्र, अथवा श्रेणी के प्रथम वर्गमूल मात्र, अथवा द्वितीय वर्गमूल मात्र, अथवा घनांगुल मात्र, अथवा घनांगुल के संख्यात्वे भाग मात्र, अथवा घनांगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र, क्या होते हैं या नहीं होते, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं, वे घनांगुल के, वे अंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र ही होते हैं, कारण कि ऐसा आचार्य परंपरागत उपदेश है। यानी जो स्टार्टिंग में जैसे अंगुल का असंख्यात्वा भाग देखा था, वैसे लास्ट दो वृद्धियों में जो है वहां पर भी अंगुल का असंख्यात्वा भाग ही ले लेना, ये कहना चाहते हैं। बीच में अनवस्थित वृद्धि देखी थी, वहां वाली वो अवस्थित लेना है। अथवा उक्त क्षेत्र विकल्पों के विषय में ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्संबंधी युक्ति व सूत्र का अभाव है, ऐसी कोई स्पेशल उसके लिए सूत्र नहीं बनाया है। सूत्र में तो अंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र वो विकल्पों की बात है, तो वहां पर भी वो घटित होगी, एक बात तो ये है, और दूसरी ऐसा कोई सूत्र नहीं तो हमें मालूम नहीं है कितनी वृद्धि होगी, ये कहना चाहते हैं। क्षेत्र विकल्पों से द्रव्य और भाव के विकल्प असंख्यात गुणे हैं, और गुणकार अंगुल का असंख्यात्वा भाग है। हम द्रव्य के कितने विकल्प है नहीं कह सकते, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन क्षेत्र के विकल्पों पर। एक क्षेत्र के विकल्प के प्रति अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, तो जितने वहां क्षेत्र के विकल्प हो गए उसको असंख्यात गुणा करना, उतने द्रव्य और भाव के टुगेदर विकल्प हो गए। तो क्षेत्र विकल्पों से द्रव्य और भाव के विकल्प असंख्यात गुणे हैं। या असंख्यात गुण यानी कौन सा है गुणकार? गुणकार अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, वो पहले हमने देख चुके थे। क्योंकि अंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों के बीत जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है, ये तो कायम यही रूल है। परंतु क्षेत्र के कितने विकल्प जाने पर समय काल में एक समय की वृद्धि होती है वो हमने देखे थे, कहीं अवस्थित है कहीं अनवस्थित वृद्धि होती है। इस प्रकार द्विचरम समान वृद्धि की प्ररूपणा की गई है। पुनः द्विचरम समान वृद्धि के औदारिक द्रव्य को देखो, द्विचरम समान वृद्धि का औदारिक द्रव्य किसको कहेंगे हम? जहां समान वृद्धि हुई है ना, अभी काल एक समय का और कम, अभी एक बार और काल एक समय कम बढ़ेगा, तभी जो क्षेत्र का विकल्प है वहां जो द्रव्य का विकल्प है। द्रव्य का विकल्प कैसे आया? अभी तक जितने क्षेत्र के विकल्प बीत चुके, एक एक प्रदेश से बढ़े ना, कहां से कहां तक पहुंचे हैं, लोक तक पहुंचने वाले हैं, अभी लोक में कुछ कम है, और वो जघन्य वो हमने देखा था कि सूक्ष्म निगोद की बात थी, तो प्रदेशों में इतनी वृद्धि हुई है और इस एक एक प्रदेश के 7 अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण द्रव्यों के विकल्प हुए हैं। इतनी बार ध्रुवहार से भागहार देते आए हम, किसको? औदारिक का विश्रसोपचय सहित वाला जो संचय था उसको लोक से भाग दिया था हमने। पहली बार शुरुआत किया तब उतने द्रव्य से शुरुआत की थी, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, अभी द्रव्य के कितने विकल्प हुए, जितने क्षेत्र के विकल्प हुए उसको असंख्यात गुणा करो, इतने ही द्रव्य के विकल्प हुए। इतनी बार हमने ध्रुवहार से भाग देते देते आ गए हैं। अब यहाँ जो औदारिक का जो प्रमाण होगा उसकी बात चल रही है, ख्याल में है ना? बस इसके आगे भी बहुत बार भाग देना है। अभी तो हम देशावधि में है, परमावधि में क्या होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक साथ वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि इसके इतने होने पर ये बढ़ता है, ऐसा वहां नहीं है। एक साथ तीनों की वृद्धि होती है, चारों की वृद्धि होती चलती है, और वो भी उसके असंख्यात भेद है। तो यहाँ देखो क्या कहते हैं, द्विचरम समान वृद्धि के औदारिक द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर, उनकी अवस्थित विरलना क्या है, ध्रुव भागा वो हमने देखा था, मनोवर्गणा के जो भेद थे उसको अनंत का भाग दिया था और उसको ध्रुव भागहार कहा था। तो यहाँ ध्रुवहार को विरलन करना और उसमें वो औदारिक का द्रव्य देना, हमारी भाषा में वहां का जो संचय वाला जो था ना, भाग देते 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 दो प्रमाण आया था, उसको और एक भाग ध्रुव भागहार से भाग देना, उसके आगे का द्रव्य विकल्प होता है, यानी उतने सूक्ष्म स्कंद तक को जानेगा। द्विचरम समान वृद्धि के भाव को, यानी भाव हमने देखा था असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा होता आया है, उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर तदनंतर भाव विकल्प होता है, ये यथा योग्य असंख्यात से गुणा करना है। इस प्रकार अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र द्रव्य व भाव के विकल्पों के बीत जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश बढ़ता है। इस प्रकार इस क्रम से द्रव्य और भाव के द्विचरम विकल्प तक ले आना चाहिए। हमें मालूम नहीं क्षेत्र के कितने विकल्प हैं, परंतु हर बार उतने 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 उसके लाना है। पुनः अंतिम देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को उत्पन्न करते समय द्विचरम औदारिक द्रव्य को छोड़कर एक समय बंध के योग्य कारमाण वर्गणा द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य होता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये जो द्रव्य की अपेक्षा जो द्विचरम भेद है ना, क्या कहा मैंने, द्रव्य की अपेक्षा द्विचरम भेद, उसके बाद द्रव्य का अंतिम भेद होने वाला है देशावधि का उत्कृष्ट ज्ञान। तो ये जो द्विचरम भेद है वो औदारिक को हम इतने बार भाग देते 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 आया यहाँ पहुँचा है, वो कितना है, तो कारमाण वर्गणा का जो प्रमाण है वो है वहां पर। और उत्कृष्ट में कारमाण वर्गणा को एक बार हम ध्रुव भागहार से भाग देंगे उसकी संख्या आने वाली। पहले तो देखो कारमाण वर्गणा का अर्थ क्या होता है, एक समय में ऐसी अनंत वर्गणाएं ग्रहण होती है। अब औदारिक शरीर की वर्गणाओं में भी बहुत सारी वर्गणा होती ना, समय प्रबद्ध की बात थी, और हम जो देखते थे वो संचय था पूरा उत्कृष्ट संचय, वो विश्रसोपचय सहित वाला था मध्यम वाला, उसको हम भाग देते देते आए। तो भाग देते 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 द्रव्य की अपेक्षा द्विचरम जो भेद है वो कितना है, तो कारमाण वर्गणा जितना है, ये उसका अर्थ है। फिर से पढ़ते इसको, यानी अभी देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य कैसे आएगा, कारमाण वर्गणा डिवाइडेड बाय ध्रुव भागहार। तो यही नीचे से पांचवी लाइन में बताया है, पुनः अंतिम देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को उत्पन्न करते समय, यानी वो कितने सूक्ष्म स्कंद तक को जानता है, द्विचरम औदारिक द्रव्य को छोड़कर अभी उसके बदले क्या करना है, एक समय बंध के योग्य कारमाण वर्गणा द्रव्य को, यानी कारमाण वर्गणा का जो प्रमाण है परमाणुओं का, अवस्थित विरलना से समखंड करके देने पर, हमारी भाषा में ध्रुव भागहार से भाग देने पर देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य होता है। ये समझ में आया, देशावधि का देखो, देशावधि ज्ञान के अभी उत्कृष्ट लिमिट तक हम पहुंचे हैं। उसका क्षेत्र कहाँ तक जानता है तो एक लोक तक। काल कितना जानता है तो एक समय कम पल्य, आगे पीछे, वर्तमान से आगे पीछे। और द्रव्य कितने सूक्ष्म स्कंद तक जानता है, कारमाण वर्गणा को एक बार ध्रुवाघार से भाग दो उतने सूक्ष्म स्कंद तक जानता है, ये उसका अर्थ होता है। भाव में यथा योग्य असंख्यात गुणा अभी, अरे बहुत सूक्ष्म है। विश्व सोपचे तो औदारिक शरीर का था, है ना, और उसके साथ वाला था। ये कारमाण वर्गणा ऐसी एक समय में, अनंत कारमाण वर्गणा एक समय प्रबद्ध में होती है। यहाँ केवल कारमाण वर्गणा लिए ना, तो एक कारमाण वर्गणा में कितने अनंतानंत परमाणु है, उसको ये ध्रुवाहार से भाग देना। हमने देखा ना, एक एक कारमाण वर्गणा में परमाणु कितने होते हैं, तो कहते अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत विभाग। अब उसको ये ध्रुवाहार से भाग देंगे, वो वहां का स्कंध का प्रमाण आएगा। उस वहां तक के इतने छोटे तक को जानते हैं। देशावधि के द्विचरम भाव को, भाव यानी वो उसका भी कितने पर्याय जानता है। तत्प्रायोगिक असंख्यात रूपों से गुणित करने पर हर बार भावों में असंख्यात गुणा की वृद्धि होती है। देशावधि का उत्कृष्ट भाव होता है, भाव में क्या लेना, वो उस पर्याय से परिणत उसकी जो अवस्थाएं उसको ले लेना। क्षेत्र के ऊपर एक आकाश प्रदेश बढ़ने पर देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक होता है। लोक, पहले लोक में एक प्रदेश कम था, अभी पूरा लोक हो जाएगा, क्योंकि वर्गणा में जब तक लोक है तब तक प्रतिपाती है, ऊपर अप्रतिपाती है ऐसा कथन है। हाँ, देखो क्या कहते हैं, वर्गणा में जब तक लोक है तब तक प्रतिपाती है, ऊपर अप्रतिपाती ऐसा कथन है। अर्थात उसी का अर्थ बता रहे, क्षेत्र की अपेक्षा उत्कर्ष ने उत्कृष्ट चाहिए। एक्चुअली उत्कृष्ट लोक को विषय करने वाला देशावधि प्रतिपाती है, प्रतिपाती ने उसमें से गिर सकते हैं, और इससे आगे के परमावधि व सर्वावधि अप्रतिपाती है। यानी वो तो हमने देखा था ना, चरम शरीर के होते हैं और उसी भाव में मोक्ष भी जाते हैं, और वहाँ उसके ना चारित्र से गिरते हैं ना ही उनका अवधि ज्ञान गिरेगा, वो ये सब बढ़ते हुए तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये देशावधि के भेद ना, प्रतिपाती है, अप्रतिपाती है, अनुगामी है, अननुगामी है, वैसे वैसे क्षेत्र अनुगामी, भवानुगामी, उभयानुगामी वगैरह उसके भेद आते हैं सारे। हाँ, वो हीयमान वाले, वर्धमान वाले, ऐसे सारे भेद इसमें पाए जाते हैं देशावधि में। तो देशावधि सारे तो प्रतिपाती हो सकते हैं, परंतु परमावधि और सर्वावधि चरम शरीर वालों के वो अप्रतिपाती है, यही बात यहाँ बताई। फिर से पढ़ती हूँ मैं कि वर्गणा में जब तक लोक है तब तक प्रतिपाती है। वर्गणा में उसका जो हम देख रहे हैं उसका क्षेत्र कहाँ तक है, तो लोक तक। तो लोक तक तो देशावधि का है, हाँ, तो तब तक वो प्रतिपाती है, ऊपर अप्रतिपाती है। ऊपर यानी ऊपर का भेद कौन सा होगा, परमावधि का होगा। परमावधि भले वो जघन्य भी हो, वो अप्रतिपाती है। अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट लोक को विषय करने वाला देशावधि प्रतिपाती, और इससे आगे के परमावधि व सर्वावधि अप्रतिपाती है। द्विचरम काल के ऊपर एक समय का प्रक्षेप करने पर देशावधि का उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्य होता है। यानी उसके द्विचरम भेद से चरम में क्या क्या लेना है, क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ाना, काल में एक समय बढ़ाना, तो वहाँ बढ़कर कितना हुआ, पूरा लोक। देशावधि की उत्कृष्ट मर्यादा क्या है? पूरा लो, यानी उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान है। और वो कितने क्षेत्र तो बताए, पूरा लोक। और काल में एक समय कम पल्ले तक आगे पीछे का जानेगा, ये काल की मर्यादा हो गई। आगे बढ़ते, नया पैराग्राफ 36 पृष्ठ पर। ऐसी जो अन्य आचार्यों के आचार्य हुआ, आचार्य करो, ऐसी जो अन्य आचार्यों के व्याख्यान क्रम की प्ररूपणा है, वह युक्ति से घटित नहीं होती, क्योंकि वैसा मानने पर सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों के उत्कृष्ट अवधि द्रव्य से उत्कृष्ट देशावधि द्रव्य को अनंत गुणत्व का प्रसंग आ जाएगा। वही इस प्रकार से लोक के संख्यात्वे भाग को शलाका रूप से स्थापित करके, यानी उनका क्षेत्र कितना है लोक का संख्यात्व भाग, क्योंकि 14 गणराज्य हैं, मनोद्रव्य वर्गणा के अनंत विभाग का यानी ध्रुव भागार का विश्रसोपचय रहित अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रदेशों में आगमानुसार भाग देने पर अंतिम एक खंड को सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव जानता है, यानी इतने सूक्ष्म स्कंध तक को जानता है। वो पहले हमने देखा था देवों का कैसा निकालना, द्रव्य की अपेक्षा भेद, तो उनका जो क्षेत्र है, जो उत्कृष्ट क्षेत्र है उसको बताया था, उन्होंने बताया था वो 14 राजू, वो कितना है तो लोक का संख्या तो अभाग है। और एक बाजू उनका क्षेत्र रखना और एक बाजू उनके अवधि ज्ञानावरण कर्म के प्रदेश रखना, तो क्या करना है? हर बार क्षेत्र में से वो एक एक बार को वाला वो क्षेत्र निकालते रहना, यानी उसको ध्रुव आधार से भाग देना और ज्ञानावरण कर्म में से एक परमाणु कम कर देना, इस तरह से। नहीं, वो ध्रुव भागार का उनका ज्ञानावरण के कर्म प्रदेशों में भाग देते जाना। यहां लोक का संख्यात्व भाग को शलाका रूप से स्थापित करना, और विश्रसोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रदेशों में ध्रुवार का भाग देते जाना। परंतु उत्कृष्ट देशावधि ज्ञानी एक बार खंडित एक समय प्रबद्ध को जानता है, हमने अभी देखा था ना, उत्कृष्ट देशावधि कितना जानता है, अभी हमने देखा था कारमाण वर्गणा को एक बार ध्रुवार से भाग दो इतना जानता है, ये अभी अभी हमने देखा था। पूरा एक समय प्रबद्ध को एक बार किया उन्होंने, और एक समय प्रबद्ध और नाना समय प्रबद्ध कृत भेद भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र उसके गुणकार की प्रधानता का अभाव है। यह देवों के उत्कृष्ट द्रव्य की उत्पादन विधि असिद्ध नहीं है, क्योंकि अपने क्षेत्र में से एक प्रदेश उत्तरोत्तर कम करते हुए अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म का अनंतवा भाग है, इस सूत्र से सिद्ध है। यानी अवधि ज्ञानावरण का अनंतवा भाग है ना, अवधि ज्ञानावरण कर्म को ध्रुवार से भाग देते जाना, वहां एक बार भाग दिया यहाँ एक प्रदेश कम करो, दूसरी बार भाग दिया दूसरा प्रदेश कम कर दो, तो कितने प्रदेश है उनके पूरे 14 राज्यों वाले, तो वो द्रव्य कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना। इस कारण जघन्य द्रव्य से आगे उसके योग्य विकल्पों के बीत जाने पर विश्रसोपचय सहित औदारिक द्रव्य को छोड़कर विश्रसोपचय रहित कारमण समय प्रबद्ध देना चाहिए, क्योंकि औदारिक विश्रसोपचयों से कारमण विश्रसोपचय अनंत गुणे हैं। और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि औदारिक शरीर का विश्रसोपचय सबसे स्तोक है, उससे वैकृत शरीर का विश्रसोपचय अनंत गुणा है और उससे आहारक शरीर का विश्रसोपचय अनंत गुणा है, उससे तेजस शरीर का विश्रसोपचय अनंत गुणा है और उससे कार्मण शरीर का विश्रसोपचय अनंत गुणा है। इस प्रकार वर्गणा सूत्र से उसे अनंत गुणत्व सिद्ध है। अब शंकाकार पूछते हैं, विश्रसोपचयों को छोड़कर औदारिक परमाणुओं को ही अवस्थित विरलना से क्यों नहीं देते? यानी पहले तो वो ध्रुव भागार की विश्रसोपचय सहित औदारिक शरीर को भाग देते थे, अब औदारिक शरीर को ही भाग दो ना, विश्रसोपचय को रहित कर दो। नहीं देते क्योंकि वे विरलन राशि से अनंत गुणे हीन है, ऐसा गुरु का उपदेश है। यानी जो ध्रुव भाग है हार है उससे वो छोटी संख्या है। शंका, विरलन राशि से कार्मण द्रव्य अनंत गुणाह्य कैसे जाना जाता है? यानी वो ध्रुव भाग हार से वो अनंत गुणाह्य कैसे जाना जाता है? समाधान, आहार वर्गणा के द्रव्य स्तोक है, तेजस वर्गणा के द्रव्य उससे अनंत गुणे हैं, भाषा वर्गणा के द्रव्य उससे अनंत गुणे हैं, मनोवर्गणा के द्रव्य अनंत गुणे हैं, कार्मण वर्गणा के द्रव्य अनंत गुणे हैं, इस वर्गणा सूत्र से वह जाना जाता है। कौन सी वर्गणा में कितने परमाणु होते हैं उसका यह प्रमाण वहाँ बताया हुआ है। यानी आहार वर्गणा जो औदारिक शरीर जिससे बनी है वो वर्गणा में परमाणु कम है, ये स्थूल है और वो सूक्ष्म है, नंबर ऑफ परमाणु वहाँ ज्यादा हो गए। सूक्ष्म है और उसमें ज्यादा, जैसे हम वो उदाहरण देते, बहुत मोटे तौर पर उदाहरण देते हैं, हमने गेहूं लाया 1 किलो, तो उसमें गेहूं के कितने दाने हो गए, एक बात कम हो गए। अब उसको पीसा हमने या रवा बनाया तो उसमें एक एक वो पार्टिकल कितने हो गए। अब उसका आटा बनाया, मैदा बनाया डायरेक्ट, और सूक्ष्म परिणमन है तो उसके वो कण कितने हो गए, कितने ज्यादा हो गए ना। हाँ, वजन तो उतना ही है ना उसका। ये तो बहुत मोटा स्थूल उदाहरण है समझाने के लिए। यहाँ तो जो आगे आगे वाली जो वर्गणाएं है ना, जो जो ग्रहण करता है, ये उसका स्थूल परिणमन है और आगे वाला सूक्ष्म परिणमन है। उसमें परमाणु बहुत ज्यादा होते हैं, अनंत गुणे होते हैं, यहाँ कम होते हुए भी मोटे हैं। हाँ, परमाणु की है ऐसी विशेषता है वो। शंका कारक पूछता है फिर, यदि ऐसा है तो आदि से लेकर कार्मण द्रव्य को ही मनोद्रव्य वर्गणा द्वारा क्यों खंडित नहीं करते, क्या कहना चाहते हैं? वो पहले से ही लेना था ना, वहाँ उदारिक शरीर विश्रसोपचय क्यों लिया और अभी ले रहे कि विश्रसोपचय रहित कार्मण द्रव्य, वहीं लेना था पहले। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर देशावधि के मध्य विकल्पों में जहाँ अवधि ज्ञान, ये जो 14 नंबर ऊपर का पढ़ना रह गया उसको पहले पढ़ेंगे। हमने देखे थे ना ये 19 कांडिक बताए, कुछ कांडक बताए हैं, अभी द्रव्य की अपेक्षा कुछ भेद बताते हैं। पहले हमने शुरू किया था औदारिक शरीर को विश्रसोपचय सहित करके उसको भाग दिया था, आगे आगे बीच वाले कुछ द्रव्यों के विकल्प बताएंगे। वो द्रव्यों के विकल्पों में कहाँ विश्रसोपचय सहित रहित तेजस वगैरह जिसको जो लेना है वो बताएंगे, और बाद में जाके कार्मण तक पहुँचे हम वहाँ के विकल्पों में। जो तो द्विचरम विकल्प है, कौन सा? देशावधि का द्विचरम, यानी उत्कृष्ट का पहला, एक नंबर पहला, उसमें वो कार्मण द्रव्य को ध्रुवाहार से भाग देंगे, तब जाके अंतिम विकल्प आएगा। वो कार्मण द्रव्य का जो प्रमाण है वो वहाँ का द्रव्य का प्रमाण है, द्विचरम देशावधि का, उसके लिए पहले गाथा पढ़ेंगे। ऊपर 14 नंबर है ना, तेया कम्मय शरीरम तेया दौवम भास दौवम च बौद्धवम असंखे जा देव समुदाय वासाय। नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर देशावधि के मध्य विकल्पों में जहाँ अवधि ज्ञान, अभी उसके लिए द्रव्य का प्रमाण या वो कितने तक जानता है उसकी बात बताई है, तो कहते कि तेजस शरीर यह विशेष उपचय सहित वाला तेजस शरीर लेना। उससे आगे कार्मण शरीर, वो भी विशेष उपचय सहित वाला लेना। उसके आगे तेजो द्रव्य, यानी केवल तेजस शरीर, यानी विशेष उपचय रहित तेजस वर्गणा, वहाँ शरीर लिया, यहाँ वर्गणा लिया। उसके आगे भाषा द्रव्य अर्थात विश्रसोपचय रहित भाषा वर्गणा, और उससे आगे मनोवर्गणा को जानता है विश्रसोपचय रहित। वहाँ क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र और काल असंख्यात वर्ष प्रमाण होता है। यानी इनमें तो काल और क्षेत्र असंख्यात गुना हो जाता है वहाँ पर, यानी उसके बीच वाले कुछ, जब ये इतना असंख्यात लोक प्रमाण हो, क्योंकि आगे वाले भेद बताए ना, वहां द्रव्य का प्रमाण क्या हो जाता है उसकी बात है। इस सूत्र रूप गाथा के साथ विरोध होगा, इसलिए कहीं औदारिक शरीर, कहीं तेजस शरीर, कहीं कार्मण शरीर, कहीं तेजस द्रव्य, कहीं भाषा द्रव्य, कहीं मन द्रव्य और कहीं कारमान द्रव्य देना चाहिए, क्योंकि वो विकल्प बता चुके हैं बीच बीच में। अब ये विकल्प इसमें तो नहीं बताया, शायद आगे बताएंगे, मगर वो जीव कांड में थे उसकी बात हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी तो होगा नहीं है, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा कुछ, जिसको हम कहते हैं माइलस्टोन्स, बीच बीच में कोई फॉर एग्जाम्पल अलग अलग बताते हैं, उसमें वो आता है। शुरुआत में हमने औदारिक शरीर प्लस विश्रसोपचय लिया था, फिर तेजस शरीर प्लस विश्रसोपचय लेंगे, उसको भाग देंगे, कहीं कहीं कारमान शरीर को विश्रसोपचय से उसका भाग देंगे, उसको भाग देंगे, इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रमाण को भाग देना है। उसकी बात कल थोड़ी पढ़ेंगे जीवकांड में से, फिर आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो। मैं भाई।